नियमों का अनुकरण करते हुए एक नवीन धर्म पद्धति चला दी। इस पापमय कर्मों के युग कलयुग का लाभ उठाकर राजा अर्हत ने मोहवश बाधा रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध नवीन धर्म पद्धति गढ़ ली। यह जैन धर्म का शुभारंभ था। अन्य अनेक धर्मों ने इस नास्तिकतावाद को ग्रहण किया। तात्पर्य, जब इस लोक में श्री कृष्ण विद्यमान थे तो पांडुरंग नामक एक व्यक्ति ने नारायण के चित्रपुच रूप का अनुकरण करते हुए अपने आप को श्री भगवान घोषणा कर दिया। वह श्री कृष्ण की बराबरी करना चाहता था। इस प्रकार ऋषभदेव के काल में कुंक तथा वेंग के राजा ने परमहंस का आचरण करते हुए भगवान ऋषभदेव का अनुकरण किया। उसने एक धर्म चलाया और इस कलयुग में जनता की अधोगति का लाभ उठाया। वैदिक साहित्य में कथित है कि इस कलयुग में लोग किसी को भी परमेश्वर मान कर वेद विरुद्ध किसी भी धर्म पद्धति को स्वीकार करेंगे। इस युग के व्यक्तियों को मंदा सुमंद मदेहा कहा गया है। सामान्यतः उसकी कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती है और वे अत्यंत अदम होते हैं। इसी कारण से वे कोई भी धर्म स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्यवश वे वैदिक नियमों को विस्मृत करते हैं। इस युग में अवैदिक नियमों का पालन करते हुए वे अपने को परमेश्वर समझते हैं और निरीश्वरवादी संप्रदाय को विश्व भर में फैलाते हैं।
ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानार्जुन शलाकाय चक्षुरं विदितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति सर्वदानादिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंद मदेर्गतिमत्सर्वस्वपदाम्बुजो राधा मदनमोहनो
यम ब्रह्मा उरणेन्द्र द्रमृतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगप्रदक्षिणोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः।
सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि ऋषभदेव के कार्यकलापों को उनकी शिक्षाओं को वर्णन करने के बाद बोलते हैं कि एक राजा था, उनका नाम था अरहत। ये अरहत राजा ने क्या किया, ऋषभदेव का अनुकरण किया, यानी ऋषभदेव जो कार्यकलाप कर रहे थे बस उन्होंने जो किया मैं भी वैसे करूंगा। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस यानी आज्ञाएं दिए उनको पालन नहीं किया बल्कि उनके कार्यकलापों को नकल करने के लिए प्रयास किया। तो पहले भी हम कह चुके हैं, एक है अनुसरण, दूसरा है अनुकरण। अनुसरण मतलब आज्ञाओं को पालन करना, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। अनुकरण मतलब उनकी कार्यकलापों को नकल करना। एक ने आज्ञा पालन करना, दूसरा है नकल करना। हमको भगवान की इंस्ट्रक्शंस या ऋषभ देव की आज्ञाओं को पालन करना है बल्कि उनको नकल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अरहत राजा ने क्या किया, उनका ऋषभ देव की कार्यकलापों को नकल करने के लिए प्रयास किया, उनको अनुकरण किया। अनुकरण करने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसा धर्म का प्रचार किया जो जिन इन शब्दों से इस्तेमाल किया गया है, वो धर्म को इधर वर्णन किया गया है कि वो है फाकंडम कुपतम पाखंडम असमंजसम। ये श्लोक में तीन शब्द इस्तेमाल किया गया है। कुपतम मतलब क्या है, असली पथ से या गलत रास्ता है, ठीक उल्टा रास्ता है। कुपतम नाश की ओर लेके जाने वाला वो रास्ता है। दूसरा है फाकंडम, फाकंड धर्म है। और तीसरा है असमंजसम। असमंजसम मतलब कुछ समझ में नहीं आता है क्या है, कौन सा धर्म है, इसका कहाँ रखा है, इसका कोई रूट ही नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस प्रकार की धर्म है। तो इस धर्म का नाम क्या है, बोला गया इस धर्म का नाम है जैन धर्म। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द जैन धर्म। निज मनीषा ये जैन धर्म के रूप में जाना जाता है। तो आजकल हमको बहुत सारे जैन मिलते हैं, कहीं भी जाएंगे तो जैन लोग जरूर रहते हैं पूरा हर जगह। ऐसा नहीं कि केवल मुंबई में है, केवल गुजरात में है, राजस्थान में है। खास करके ये जैन धर्म का प्रचार शुरू हुआ ये अरहत राजा से। ये अरहत का राजा जो है वो कोंका वेंका और कुटका चला, ये तीन जगह के वो राजा था। जैसे कोंका मतलब कोंकण, आपने सुना हो कोंकण रेलवे, वो दक्षिण भारत में है। ये जो पहाड़ी इलाका है दक्षिण भारत का पश्चिमी तट का, जो अस्तित्व में परशुराम क्षेत्र के रूप में हम जाना जाता है, परशुराम सृष्टि है उसको, तो वो कोंकण एरिया है। वो पहाड़ी इलाकों के जो राजा है उन्होंने क्या किया कि जैन धर्म को स्वीकार किया। कोंका वेंका और कुटकाचला, जैसे मैं जब क्लास में बता रहे थे, ये कुटकाचला जो है वो उसी के ऊपर शंकराचार्य तपस्या किया उन्होंने। बहुत सबसे बड़ा वो अचल है, हम उसमें पहाड़ में चल के भी गए थे। और वो जो जगह जिसमें ऋषभदेव ने अपने पिछले श्लोक में पढ़ा कि इस प्रकार उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, वो अभी भक्तिवेदता इको विलेज करके नाम पे जाना जाता है, उधर है। उधर फॉरेस्ट फायर आया था और सभी प्राणियां जल गए, ऐसा तथाकथित दिखा है उन्होंने किस प्रकार मैं भी एक साधारण से मनुष्य हूँ। जितने ऋषभदेव भगवान के अवतार होने के आवश्यकता विश्व अवतार होने के नाते वो उनका शरीर कभी नाश नहीं होता है, वो आत्मा के सब वो संपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ऐसा कभी नाश नहीं होता है। तो ये कुटकाचल अस्तित्व में शास्त्र में वर्णन है उधर के स्थल पुराण के अनुसार, ये हनुमान जी जब पहाड़ उठा के जा रहे थे, वो जो ऊपर का जो भाग है पहाड़ का, कौन सा पहाड़ है, उन्होंने गंधमदन माउंटेन उठा के लेके जा रहे जिसके अंदर संजीवनी ये था। तो कुटक का मतलब ऊपर का भाग, यानी हनुमान जी जब वो पहाड़ को उठा के लेके जा रहे थे, वो पहाड़ का जो ऊपर का भाग है वो टूट के नीचे गिरा था, तो वही पहाड़ को कुटकाचल बोला जाता है।
हनुमान जी संजीवनी पर्वत को उठा के लेके जा रहे थे ना, उस समय का बात। तो इसका ऐसा बोला जाता है कि उधर के जो बहुत सारे झरने गिरते हैं, वो झरनों में संजीवनी है अभी भी बोलते हैं। उधर कोई व्यक्ति नहा लेता है उनके सारे बीमारियां दूर हो जाता है। अभी खास करके बारिश के मौसम में जाएंगे, हर जगह झरने दिखाई पड़ते, वाटरफॉल्स दिखाई पड़ते, बहुत सुंदर इलाका है, जाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो उधर का एक राजा है, उन्होंने क्या किया, इनको अनुकरण करना शुरू किया। तो इसके वजह से सारे प्रकार की भ्रांतिकर धर्म उत्पन्न होते हैं। तो जब धर्म की बात आता है, आजकल सभी लोग सारे धर्मों को एक ही नजरे से देखते हैं। कुछ प्रकार के लोग हैं, कुछ प्रकार बोलते हैं कि हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से अच्छा है, कुछ प्रकार इस प्रकार कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बस सारे धर्मों को बंद करो, क्या करो, बस मानवतावाद को स्वीकार करो। तो अलग अलग प्रकार के भ्रांतिकर धारणा इनको प्राप्त होता है। लेकिन स्पष्ट रूप में वास्तविक धर्म क्या है, कोई उसके ऊपर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई विचार नहीं करता है। तो इधर हमको ये जानना चाहिए कि हर एक प्रकार को जो अपने आप को तथाकथित धर्म है, उनका स्थिति क्या है, व्हाट इज देयर पोजीशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। असलियत में हम अभी उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और कुछ पढ़ रहे थे इनसे, इन धर्म के ऊपर, या अलग अलग प्रकार के जो तथाकथित धर्म अपने आप को धर्मवेत्ता कहते हैं, तो उसके ऊपर एक लेक्चर हम पढ़ रहे थे, जिसमें श्री भक्तिनाथ ठाकुर के एक ग्रंथ है, उसका नाम है, एक उनके बाद बचे उसका नाम है तत्व विवेक, उसके ऊपर से कुछ कोटेशन लेके उन्होंने चर्चा किया था कि किस प्रकार वैष्णव आचार्यों ने दो कार्य किया है, एक है स्वमत स्थापना, दूसरा है परमत खंडना। स्वमत स्थापना मतलब क्या है, हमारा जो सिद्धांत है उसको स्थापना किया है, वास्तविक धर्म क्या है उन्होंने बताया, वो द रिलीजियस प्रिंसिपल्स वर स्पोकन, कि हरिनाम ही कलयुग का धर्म है, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, राधा कृष्ण नहीं आनी है, ये सब चीजें हम बता रहे, ये सही धर्म है करके बताइए, इसको बोलते हैं स्वमत स्थापना। लेकिन साथ साथ में ये परमत खंडना, यानी जो दूसरे गलत धर्म है उनको खंडन करना, ये भी वैष्णव आचार्यों ने किया है। तो इसलिए भक्तों को ये दोनों में ज्ञान होना चाहिए, दोनों को दोनों को स्वीकार करना चाहिए। या कहीं भी कभी प्रवचन होता है, या कभी भी कुछ बोलना होता है, या कुछ लेख लिखना होता है, ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। एक है स्वमत स्थापना, दूसरा है परमत खंडना। तो इसलिए स्वमत स्थापना के लिए क्या हमारा सिद्धांत क्या है उसको जानना जरूरी है, और परमत खंडना ये करने के लिए तो हमको जो उन धर्मों में क्या गलती है वो भी जानना जरूरी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा लगेगा अरे ये तो देखो कितना तपस्वी है ये साधु, जैन साधु, अरे हम तो गाड़ी में घूमते हैं, वो तो पैदल चलते हैं, ये हमसे अच्छा है। लेकिन अस्तित्व में अगर थोड़ा सा नजदीक जाके देखेंगे, उनके हृदय में जाके देखेंगे, उनके अंदर कलमश दिखाई पड़ेगा। भले वो चप्पल पहने बिना रोड पे चलते रहते हैं, बोलते कितना, आप देखो इधर से आप गुजरात रास्ते में पकड़ेंगे, हर मतलब 30-40 किलोमीटर में आपको एक जैन देरासर मिलेगा। जैन साधु लोग दिन भर चलते रहते हैं, एक जगह से जिस जगह जाते हैं, उनका काले चलते रहना, उनका काम वही चलते रहना, और कोई चप्पल वप्पल नहीं पहनते, कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, भले वो उनका पैर भी टूट जाता है वो व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरे कोई और साध्वी है वो उनको व्हील चेयर से लेके जाते हैं, लेकिन कभी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो उनकी तपस्या देख के ऐसा लगता है कि कितने महान लोग हैं ये लोग। लेकिन असल में इनको बोला गया पाखंडी, पाखंडी भवे ध्रुवम। तो ये क्यों है, इस प्रकार की गलत धारणा हमारे मन में ना आने के लिए हमको परमत खंडना, उनके अंदर क्या दोष है वो देखना भी जरूरी है। ऐसा हो अब बोला गया कि अरे वैष्णव तो किसी के अंदर दोष नहीं देखता है, तो आप परमत खंडना मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है, दूसरों को खंडन किया उनको जो करना करने दो लेकिन शांत रहो, नहीं ये नहीं है। ऐसा भावना को हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। वैष्णव लोग वैष्णवों के अंदर दोष जरूर नहीं देखते, लेकिन गलत सिद्धांतों के दोष जो है वो सारे समाज को प्रस्तुत करते, देखो ये कितना गलत प्रचार हो रहा है, और ये भौतिक संसार के जो दोष है हाँ, जैसे भगवान बता रहे दुखकाल है शाश्वतम, बहुत ही संसार का दोष है। किस प्रकार लोग मूर्खतावश अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इसको भी हमको लोगों को प्रकाशित करते हैं। तो जो गलत सिद्धांत के अंदर दोष और एक भौतिक संसार में इंद्रियों के अंदर जो दोष है, उन सबों को निकाल निकाल के संसार के सामने अच्छे रूप में प्रस्तुत करना, ये वैष्णवों का, वैष्णव आचार्यों का, खासकर प्रचारकों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसलिए ये दोनों बातों को अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए, अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार हमारा मत को स्थापना किया जाए। दूसरा है पर मत को किस प्रकार खंडन किया जाए। अगर कोई व्यक्ति या तथाकथित कोई और साधु, कोई और संप्रदाय के जो साधु आता है तो अपना अपना बात प्रस्तुत करता है, तो उसको खंडन करना बहुत चतुराई से, ये हर कुशल प्रचारक को जानना चाहिए। जय श्री श्री राधा गुरुदाय भगवान की, जगन्नाथ गुरुदेव सुमित रामय की, हर कुशल प्रचारक को ये जानना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं ये श्री प्रभुपाद जी कितना कुशलता से, उन्हें सारे संसार में कहां जहां कहीं भी गए होंगे, हर जगह कोई भी व्यक्ति अलग कोई गलत सिद्धांत के उनके विरुद्ध कोई प्रस्तुत करता है या अपने वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात को प्रस्तुत करता है, तुरंत श्री प्रभुपाद जी ऐसा गिरिराज के लेक्चर में बोला था, उन्होंने बोला कि लाइक एन हैमर, जैसे कोई कील को टोकने के लिए हैमर डाल देता है, पटक करके निकल जाता है, ऐसे उनके ऊपर ऐसा हैमर डाल देते हैं, सर के ऊपर ऐसा मार देते हैं ताकि उधर ही उसका मुंह बंद हो जाता है। बहुत जगह कोई व्यक्ति बोलता था कि प्रभुपाद जी आप साईं बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं उनके बारे में नहीं सोचता हूँ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ साईं बाबा, आई डोंट थिंक ऑफ हिम, तो चुप हो गया। तो कुछ दिन पहले सुन रहे थे तो एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप हमको क्या सिखाने के लिए आए हो, तो प्रभुपाद जी बोले मैं वो आप जो भूल गए उसको सिखाने के लिए आया हूं। उनके जवाब देखेंगे तो एक है परमत खंडना, दूसरा है स्वमत स्थापना। एक शब्द उन्होंने क्या पूछा कि मैं आप हमको क्या सिखाने के लिए आए हो, प्रभुपाद जी ने सारा सिद्धांत को एक बहुत सरल शब्दों में जो आप भूल गए उनको सिखाने के लिए आए हो। क्या भूल गए, हम कृष्ण को भूल गए, असित में हमको कुछ अलग से याद दिलाना नहीं पड़ता है, उसके अंदर सब गहरा सिद्धांत हर चीज है जो बोलो उस खाली छोटा सा स्टेटमेंट में। तो दिस इज द एक्सपर्टाइज ऑफ ए प्रीचर, अगर सच में किसी को कुशल प्रचारक बनना है तो ये जो आचार्यों की जो कन्वर्सेशन है, उन किस प्रकार वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत किए और गलत सिद्धांत को खंडन किए, ये जानना बहुत जरूरी है। खास करके जो लीडरशिप पोजिशन में है, जो प्रचारक के या कोई एक पोजीशन में है, खास करके राजा, यानी कुछ लोग उनके ऊपर निर्भर करते हैं, कुछ लोग गंडन में, उनको बहुत सूक्ष्मता से विचार करना है इन सिद्धांतों के ऊपर। जो इन सिद्धांतों को अच्छी तरीके से नहीं जानता है, अगर वो व्यक्ति लीडर बन जाता है कोई राजा या कोई और पदवी में बैठ जाता है, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका डिविएशन हो जाएगा, ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा भी चलता है करके, खास करके सिद्धांत की बात जब आता है उधर कोई चलता है ये फिलॉसफी अप्लाई नहीं होता है। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ठीक है चलता है, थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा बहुत मान लो ना, उन लोगों को भी क्या चलता है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं जरा सा भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। व्हेन इट कम्स टू द पोजिशन ऑफ सिद्धांत एक्सेप्टिंग प्रेजेंटिंग अवर फिलॉसफी प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी प्रिंसिपल्स ऑफ सिद्धांत, उसमें जरा सा भी इधर उधर नहीं, 19-20 चलता है। आजकल ये सब बहुत ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं जिसके द्वारा लोग हमको विमोहित कर देते हैं, ठीक है चलता है थोड़ा बहुत ये भी मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अरे इनको भी मानो ये भी तो अच्छे है। लेकिन नहीं, हम किसी भी हालत में कोई भी तरीके से इस मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। एक भक्त के अंदर अगर कोई भक्ति में कोई त्रुटियां हो जाते, गलतियां हो जाते, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम उनकी गलतियों को माफ करते हुए ये सब कुछ हम लोग ये सब सहने के लिए तैयार है, लेकिन जब फिलोसॉफिकल डिविएशन आता है उधर जरा सा भी हम सहन नहीं करेंगे। श्री प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन के ऊपर आधारित होकर बहुत सारे उदाहरण देते हुए एक लेक्चर सुन रहे थे, उन्होंने लेक्चर में बता रहे थे कि In the life of Prabhupada, he was very, very tolerant. किस पे टॉलरेंट थे? अगर कोई भक्त, इफ यू आर हैविंग सम सेंसुअल डिविएशन, सेंसुअल डिविएशन मतलब किसी कारण में कोई कुछ पहले के जमाने के भौतिक कलमश की वजह से वो भक्ति के सारे नियमों को पूर्ण तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए प्रभुपाद जी उनको प्रोत्साहित करने के लिए माफ करते थे, फिर भी वो बहुत सहनशील थे उनको, और फिर से जब अगर कोई भक्ति से गिर जाता था या कुछ नियमों को पालन करने से छूट जाता था, वो संसार छोड़ के बाहर जाता था, फिर वापस जब आते थे इसलिए प्रभुपाद जी उसको वापस ले देते, सब कुछ कर देते। लेकिन जब कोई व्यक्ति भले वो कितने भी सारे इंद्रियों को नियम दफन करते हुए कंट्रोल करते हुए बड़े कितने भी व्यक्ति क्यों ना हो, कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो जरा सा सिद्धांत में थोड़ा सा इधर भी इधर जाते थे तुरंत उनको खंडन करके उनको भगा देते थे। सो वो सार रूप में शब्द बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद एक्सेप्टेड सेंशुअल पीपल हु फॉल डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सेंशुअल प्लेटफॉर्म, बट ही नेवर एक्सेप्टेड दोज पीपल हु फेल डाउन ऑन द फिलोसॉफिकल प्लेटफॉर्म। बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान, जो ये थोड़ा चार नियम या इंद्रियों को दमन करने में थोड़ा सा अगर किसी को ये हो जाता था इसकी वजह से वो संसार छोड़ के बाहर जाते थे, फिर वापस जब आते थे तो उनको प्रभुपाद ने स्वीकार किया। लेकिन सारे इंद्रियों को अच्छे से नियंत्रण किया, सब कुछ सारे नियम फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन वो सिद्धांत के अंदर थोड़ा सा वो गलत सिद्धांत को प्रस्तुत करते थे तो श्री प्रभुपाद जी खंडन करते थे। उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि एक कुछ सन्यासी थे जो बहुत भयंकर प्रचार कर रहे थे कृष्ण भावना का, भगवदगीता के ऊपर, लेकिन साथ साथ में ये बोलते थे कि श्रील प्रभुपाद जी भगवान है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को बात पता लगा, वो तुरंत उन्होंने क्या किया, उनको संसार से बाहर निकाल दिया, इमीडिएटली बोला गेट आउट, क्योंकि ये जो है हमारे सिद्धांत से विरुद्ध है। सो सेंशुअल डिविएशंस वर एक्सेप्टेड बट नॉट फिलोसॉफिकल डिविएशंस। इसके लिए हमको क्या महत्वपूर्ण क्या क्या बात सीखने को मिलता है कि हमको सिद्धांत को इतना अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए ताकि हम भी इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझें और साथ साथ में एक गलत सिद्धांतों को कैसे खंडन करना चाहिए वो भी जानना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, सिद्धांत भलया चित्ते ना करे आलस। अगर कोई आलस करता है, अरे ये तो हम तो मालूम है हरे कृष्ण जप करना है, ये तो सिद्धांत, ये सब चीजें पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो क्या होगा, डिविएशंस हो जाएगा। वही श्री चैतन्य महाप्रभु रहेंगे, हरि नाम रहेगा, लेकिन साथ साथ में उनके बारे में जो गलत फहमियां हमारे मन में होगा वो धीरे 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 से गलत सिद्धांत की ओर लेके जाएगा। इसको बोलते हैं आपस संप्रदाय, जैसे आओल बाओल गौरंग अनादरी स्मार्त ब्राह्मण वो सब चीजें भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं 13 प्रकार के अपसंप्रदाय। ये 13 प्रकार के जो अपसंप्रदाय, एक किताब है इसके ऊपर, एक कोर्स भी है अपसंप्रदाय, इसके ऊपर किस प्रकार वो लोग डिविएशन करते हैं। वो लोग भी हरि नाम लेते हैं, वो लोग भी श्री चैतन्य महाप्रभु का पूजा करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उन हरिनाम लेने के पीछे जो भावना है और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनका समझ है वो सब गलत है, वो सब भ्रांतिकर चीज है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर या आचार्य इतना मेहनत करके ये सब किताबें क्यों लिखे, हमारे लिए लिखे ताकि हमको सूक्ष्म तरीके से सिद्धांतों को समझते हुए हमको ये कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसा लग सकता है सब कुछ ठीक चल रहा है, हरि नाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किताबें नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिद्धांत क्या है हमको ही नहीं मालूम होगा, और हमारा मेंटल कॉन्कॉक्शन, मन में मनगढ़ंत बातें हम बोलने शुरू मनगढ़ंत चीजें हम करने बैठ जाएंगे। शुरुआत में कुछ इतना डिविएशन नहीं लगेगा, शुरुआत में ऐसा लगेगा बस अभी थोड़ा सा डिविएशन है, लेकिन कुछ समय के बाद वो डिविएशन करते करते बहुत लंबा फासला हो जाएगा। जैसे एंगल बोला जाता है, शुरुआत में थोड़ा सा डिविएशन रहेगा, ऐसा करते करते बहुत समय के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में बहुत फासला हो जाएगा। तो इसलिए हमको बहुत सूक्ष्मता से, खास करके सारे भक्तों को, खास करके जो मंदिर में निवास करते हैं ब्रह्मचारियों को, उनको एक शास्त्रों का अध्ययन में बहुत ज्यादा समय लगाना चाहिए। यही आज का श्लोक का निचोड़ यही है कि ये राजा क्यों डिविएशन किया, वो राजा के पदवी होने के नाते वो सारे वैदिक नियम कानून को सबको फॉलो कर रहा था, लेकिन क्योंकि उनका कोई एक शास्त्रों का अध्ययन नहीं, और साथ साथ में वो कोई असली वैष्णव संप्रदाय के साथ जुड़ा भी नहीं था। तो ना राजा ने देखा, ओ ये ऋषभदेव इतना महान व्यक्ति है, ये तो इतना तपस्या किया, ये तो परम हमसे, वो जैसा कि मैं भी करूंगा। तो जैसे उन्होंने करना शुरू किया, बाकी सब जितने भी उनके लोग हैं, उनके फॉलोअर्स है, वो सब भी वैसे ही करना शुरू किए। इसलिए वो प्रांत में जाएंगे, वो जगह जाएंगे, बहुत सारे जैन है, खास करके कर्नाटक का इस इलाके में, कुटता चला वो कर्नाटक में पड़ता है, उधर बहुत सारे मंदिर भी है, जैन के मंदिर भी है। ऐसे लग सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो मंदिरों को संभाल रहे हैं। ऐसा एक मंदिर है उधर, मंजुनाथ स्वामी मंदिर है उधर धर्मस्थल में, शिव जी का मंदिर है उधर, जो है शिव जी का विग्रह है, और जैन लोग मंदिर को मैनेज करते हैं और वैष्णव लोग उधर पूजा करते हैं। तो गवर्नमेंट बड़ा बड़ा लेख छापता है, देखो हमने इतना सुंदर व्यवस्था किया कि ये धर्म निरपेक्षता है, सारे धर्म एकत्रित हो गए हैं, एक बार फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन असलियत में जाके देखेंगे तो उधर के जैन ना जैन है, उधर के शैव ना शैव है, उधर के वैष्णव ना वैष्णव है। वो सब के बस सब लोग नौकरी कर रहे हैं, एक व्यापार कर रहा है, और नाम कमाने के लिए बड़ा लोगों को, हजारों लाखों लोगों को वो खिलाते हैं। जैन को नाम चाहिए, व्यापारी है, तो हजारों लाखों लोगों को खिलाते हैं, एक जगह तो लोगों से लूटते हैं, लूटने के बाद खिलाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? मैंने आपसे चोरी किया और दूसरों को दान दिया, तो कौन सी बड़ी बात है? और चोरी किया वो बात को छुपा देते हैं, और जो दान दिया उसको सामने प्रस्तुत करते हैं, वाह वाह मैं देखो कितना बड़ा दानी हूं। तो वैसा चल रहा है उधर, और भी हर जगह यही बात चल रहा है। लेकिन इससे पाखंड धर्म, तो इसलिए ये दोनों बातों को खास करके हमने जो चर्चा किया। तो अभी क्योंकि इस ये बात आया, तो जैन धर्म का थोड़ा बहुत कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है उनका, वो जानना जरूरी है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स अगर कोई व्यक्ति ऐसे पढ़ लेता है, उनके जो मूल सिद्धांत है सब, अरे ये तो वैदिक धर्म ही है। उनके अनुसार ये भौतिक संसार दुखाल और अशाश्वत है, जैन धर्म के अनुसार, हमारा भी वही फिलॉसफी है ना। उनके अनुसार हमको इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाना है, ये भी हमारा फिलॉसफी है। बोलते हैं कि हमारा इंद्रियों को नियंत्रण करना है, और जब तक हम इस शरीर से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमको बार बार जन्म लेना होगा, रीइनकार्नेशन, वो भी मानते हैं। अस्तित्व में इसके लिए हमको भगवान का सहारा लेना होगा, सब एक ही जैसा लग रहा है ना, भी वही बोलते हैं, वो भी वही बोलते हैं, लेकिन हम इसके पीछे जो अज्ञान है उसको बताएंगे। जब वो लोग बोलते हैं कि ये संसार दुखाल और अशाश्वत है, उनका मतलब ये है कि ये संसार कभी सृष्टि नहीं हुआ है, ना कभी उसका असलियत है, रियलिटी है। बोलते हैं बस ये सब मिथ्या है, मिथ्या को असलियत मान रहे हो इसलिए ये दुख है। लेकिन इस संसार के पीछे एक सृष्टिकर्ता को वो स्वीकार नहीं करते, तो ये अज्ञान है। कुछ उनके सिद्धांत के अनुसार वो लोग बोलते हैं कि बस ये शरीर केवल आपको दुख देने के लिए है, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि ये शरीर मनुष्य शरीर के द्वारा हमको मुक्ति प्राप्त हो सकता है। मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, तो इनको तत्व जिज्ञासा करते हुए, शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हुए हमको मुक्त होना है, इस बात को स्वीकार नहीं करते। ये शरीर आपको दुख दे रहा है, ये शरीर को खत्म कर दो, जैसे शरीर खत्म हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते वो लोग, शरीर को इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं, अगर कोई इस शरीर की दुख को सह सकता है तो वो मुक्त हो गया। इसलिए देखते हैं कि उन लोगों की मुक्ति का पद्धति क्या है, शरीर को दुख दो, बाल खींच खींच के निचोड़ को, एक एक बाल को ऐसे ऐसे खींचते हैं ताकि उसको दर्द होता है, तो ऐसे बैठा है, तो उनको एकदम रथ के ऊपर बिठा के घुमाते हैं, देखो ये हमारे मुक्त हो गया अभी, कुछ तो अपने आप को दहन भी कर लेते हैं। शरीर को कष्ट देने से वो जो सह सकता है, ये समझ लो कि वो मुक्त हो गया। ये सारे दुखों का कारण शरीर है, ये शरीर को नष्ट कर दो, सारा दुख नष्ट हो गया। तो इसके उनको मुक्ति का मार्ग भी इस प्रकार है। और उनका इंद्रियों का दमन करना मतलब क्या है? बस नमक के बिना कुछ खाओ या सूखा चीज खाओ और जला के कुछ खा लो। तो ये सब चीजें अस्तित्व में राक्षस की प्रवृत्ति, राक्षस दे डू इट। ये आध्यात्म के साथ कुछ भी जरा सा भी संबंध है ही इन सब चीजों का। तो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमको अनासक्त होना है। हमारा हमारा मार्ग क्या है? अनासक्ति का मार्ग है। भौतिक चीजों से हमको अनासक्त होना है और भगवान के प्रति आसक्त होना है। अनासक्त से विषयान यथार्थम उपयुंजता, उस बात को भूल जाते हैं। निर्बंधन कष्ट संबंध युक्त वैराग्य मुंचते, ये हमारा विधि है। लेकिन उनका विधि क्या है? बस इस संसार से बस वैराग्य, जस्ट गिव अप दिस मटीरियल वर्ल्ड। ये मायावाद के साथ संबंध है इनका अस्तित्व में, सभी मायावादी है, लेकिन ये नास्तिक बोला जाता है। जैन और बुद्ध दे आर एथिस्टिक रिलीजन्स, क्योंकि ये वेदों को वो कभी नहीं मानते, दे डोंट एक्सेप्ट द वेद। जैन और बुद्धिस्ट दे डोंट एक्सेप्ट द वेद। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि भगवान स्वयं ये दोनों धर्मों के स्रोत बने, लेकिन अस्तित्व में भगवान ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों का धर्म इस प्रकार प्रचार हो। लेकिन ऋषभदेव जो है वो उनके कार्यकलापों को ये राजा अनुकरण किया और इस प्रकार गलत सिद्धांत को उन्होंने प्रचार किया। और हम देखते हैं कि भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में आए और बौद्ध धर्म को उन्होंने स्थापना किया। तो ये दोनों बौद्ध और जैन या कोई भी दर्शन होता है, इसका एक एक असुर, एक प्रवक्ता होता है। दो असुर थे जो ये जब समुद्र मंथन लीला हुआ था उस समय सब असुरों को वध किया गया था, उस समय दो असुर भाग गए और दो असुर बच गए। कौन थे वो लोग? ये एक जीना था, दूसरा है बुद्धा था। दो असुर थे। ये दो असुर मूल रूप में ये दो धर्मों को स्थापना किया। अस्तित्व में ये जो फिलॉसफीज है वो हमेशा ये संसार में सृष्टि के प्रारंभ से ही उत्पन्न होता रहता है। खाली एक एक व्यक्ति आके उसको प्रवृत्त करता है। जैसे शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य मायावाद सिद्धांत को उन्होंने व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह नहीं कि मायावाद सिद्धांत पहले नहीं था, मायावाद सिद्धांत था। असली जो मूल मायावादी कौन था? ओरिजिनल मायावादी रावण था। He was the real original मायावादी। तो ये मायावाद सिद्धांत अलग प्रकार के गलत सिद्धांत जो है वो पहले से संसार में उपस्थित है, लेकिन कभी कभी उस समय के लिए कोई व्यक्ति आता है उसको प्रसार करता है। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो गलत सिद्धांत भी प्रचार हो रहा है, ये भी भगवान की वजह से हो रहा है, भगवान के हाथ के बिना कुछ होता नहीं, ये क्यों करते ये सब चीजें भगवान? ये भगवान दो कारणों की वजह से करते हैं। एक है कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान से ईर्ष्या करें, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इस प्रकार का जो गलत सिद्धांत को मैं स्वीकार करूं, इंद्र तृप्ति करूं। तो उन लोगों के लिए भगवान क्या करते हैं? ऐसा सिद्धांत प्रदान करते हैं, क्योंकि यो विदधाति कामान, कोई भी कार्य करने के लिए सिद्धांत की आवश्यकता होता है, सिद्धांत के बिना कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कृष्णा गिव्स देम दिस फिलॉसफी सो दैट दे कैन सैटिस्फाई देयर डिजायर्स, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक व्यवस्था दे देते, एक दर्शन दे देते। दूसरा, जब तक कोई गलत सिद्धांत रहा हो तब तक एक सही सिद्धांत का महिमा कैसे पता लगेगा? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ द गुड रियल फिलॉसफी इफ यू डोंट नो इफ देयर इज नो रॉन्ग फिलॉसफी। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान बहुत शक्तिशाली है, उनके अंदर बल का बल है संपूर्ण रूप में। वैकुंठ में वो देख रहे, मैं इस बल को कैसे प्रकाशित करूं, क्योंकि मेरा विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा या मेरा विरुद्ध कोई एक दुश्मन नहीं है, तो मैं कैसे बल को प्रकाशित करूं? सभी लोग मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों के साथ मैं कैसे झगड़ा करूं, मैं बल को कैसे प्रकाशित करूं? इसलिए क्या करते हैं वो? एक असुर को सृष्टि करते हैं। अपने ही भक्त वासुर के रूप में बना देते, जय विजय को, तो उनके ऊपर प्रहार करके और अपना बल को दिखाते। तो ये तो बहिरंगिक बल हो गया। वैसे ही ये जो सिद्धांत का जो बल है, सिद्धांत का जो स्ट्रेंथ है, वो तभी मालूम पड़ेगा, ये वैष्णव सिद्धांत का जो ख्याति है उसका तभी पड़ेगा जब ये गलत सिद्धांतों को खंडन किया जाता है। वैष्णव आचार्यों का वास्तविक महिमा तो भगवान के दास हो सब ठीक है, लेकिन साधारण सा लोग तभी जान पाएंगे जब ये वैष्णव आचार्य, अरे इन्होंने इतना सुंदर सिद्धांत पेश किया, इतने सारे जैनों को उन्होंने परास्त कर दिया, तो ये महान है, तब लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये गलत सिद्धांत क्या है, एक एक धरातल है जिसके ऊपर वैष्णव आचार्य आके सही सिद्धांत की महिमा को प्रकाशित करते हैं। दे शो द ग्रेटनेस ऑफ द रियल फिलॉसफी व्हेन दीज रॉन्ग फिलॉसफीज आर कट डाउन। जैसे श्रीपाद रामानंद आचार्य, वो पूरा उस इलाके में, खासकर कर्नाटक में, जितने भी श्री वैष्णव है, असल में वो पहले इसी राजा के फॉलोअर्स थे, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ दिस थिंग, उन्हीं के राजा के इसमें आते हुए, एक राजा था उसका नाम भूल गया, वो हम्पी वगैरह उस जगह का राजा था, उस समय हजारों जैन लोग उस राजा को घेर के बैठे थे, उस राजा से नाजायज फायदा उठाते थे। तो उस समय श्रीपाद रामानुजाचार्य आए, तब कोई एक वैष्णव आके बताया राजा को, एक महान वैष्णव आए, उनको निमंत्रण दीजिए। तो उधर जितने भी जा रहे जैन साधु सन्यासी थे, सब लोग बोले नहीं, राजा को बोले इनको स्वीकार नहीं करना है, इनको आप। तो राजा ने बोला ठीक है, आप उनसे वाद विवाद करो। तो जैन लोगों को मालूम था कि श्रीपाद रामानुजाचार्य तो महान आचार्य है, वो सारे बहुत उनके परमंत खंडन में बहुत एक्सपर्ट है। जब शंकराचार्य को उन्होंने खंडन किया तो हम लोग कौन है, उनको डर उत्पन्न हुआ। तो राजा को बोले ठीक है, हम लोग उनके साथ विवाद करेंगे, लेकिन एक शर्त के ऊपर। क्या वो शर्त? हम सब हजार लोग बैठेंगे, हजार लोग एक ही समय प्रश्न पूछेंगे, और हमको एक ही समय हजार लोगों के लिए एक जवाब चाहिए। हम लोग अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, अलग अलग प्रश्नों का एक ही समय हमको अलग अलग जवाब चाहिए। तो राजा ने बोला अभी क्या कर सकते, राजा ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा। तो रामानुजाचार्य को बताया कि इस प्रकार है, आप लोग उस प्रकार चाहते हैं। रामानुजाचार्य बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं एक बंद कमरे में रहूंगा, मुझे कोई देखना नहीं चाहिए उस समय। और इनको शिष्यों को भी बोला कि मुझे देखना नहीं, एक पर्दा डाल दिया, मुझे देखना नहीं जब जवाब दिया जाता। तब उनके सामने हजार जैन मुनि लोग बैठे थे और सभी लोग प्रश्न पूछे, एक ही समय 1000 प्रश्न पूछा गया था, और बस 2 मिनट का साइलेंस था। उसके बाद ऐसा भयंकर सा आवाज आया और सभी जैन मुनियों को अपने अपने काम में उनका प्रश्नों का जवाब मिल गया, आधा भाग गया, आधा रामानुजाचार्य का शिष्य बन गया। और उस समय एक शिष्य था रामानुजाचार्य का, वो पर्दा खोल के देखा क्या हो रहा है अंदर। तो उन्होंने देखा ये बहुत बड़ा सांप है और उनके हजारों जिह्वाएं, उनके ऊपर से ऐसा सुंदर सा भगवान का स्तुति निकल रहा है। तो अस्तित्व में तो देख के शिष्य डर गया, उधर रामानुजाचार्य तो है नहीं, ये बड़ा सांप है, कौन है भाई ये? अस्तित्व में रामानुजाचार्य कौन है? वो अनंत देव, इस अनंत था, अनंत हिमसेल्फ, ही इज द इनकर्नेशन ऑफ द ग्लोरीफाइंग पोटेंसी ऑफ अनंत। वो अनंत देव के भगवान की स्तुति करने का जो शक्ति का आवेश अवतार है। तो उन्होंने इस प्रकार सारे जैन न्यासों को साधन को वर्णन, तब उधर के सभी लोग श्री वैष्णव बन गए और रामानुजाचार्य के अंदर उनका विश्वास बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि जब तक ये देन गलत धर्म नहीं होता है तब तक रामानुजाचार्य का ख्याति, वास्तविक ख्याति कैसे रहेगा? अब वो ख्याति नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे चर्चा करेंगे, हम लोग कैसे शुद्ध होंगे? तो इस प्रकार बाय दिस नेगेटिव रिलीजन वी ऑल्सो टेक एडवांटेज, यथार्थ उपयुंजतः यूज एवरीथिंग क्रिश्चियन सर्विस। तो श्रीपाद मध्वाचार्य उन्होंने भी वैसे किया, एक जैन साधु और बुद्ध साधु दोनों आए, बुद्धि सागरा करके, तो मध्वाचार्य के सामने बैठे हो दोनों, और अस्तित्व में वो आए वाद विवाद करने के लिए मध्वाचार्य के गुरु उसके साथ। गुरु ने बोला देखो अभी मैं इस सब चीज में मैं पढ़ता नहीं हूँ, अभी मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ आप लोगों से, लेकिन अभी श्रीपाद मध्वाचार्य जो है अभी जैन सन्यासी है, पूर्ण प्रज्ञा, उनके साथ वाद विवाद करो। और हजार लोग बैठ के देख रहे हैं और इधर मध्वाचार्य बैठे उनके सामने, जैन और बुद्धि सागर वो बौद्ध दोनों बैठे, और बौद्ध जो साधु है और सन्यासी है उन्होंने बताया कि सब कुछ कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज नथिंग. मध्वाचार्य ने बोला अगर इफ एवरीथिंग इज नथिंग व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो नथिंग बिकॉज यू आर सेइंग इज आल्सो कमिंग अंडर एवरीथिंग. उनके अनुसार सब कुछ कुछ नहीं है, यानी बौद्धों का सिद्धांत यह है कि निर्वाण, निर्वाण को प्राप्त होने अस्तित्व है, कुछ है ही नहीं, तुम सोच रहे हो कुछ है, यही प्रॉब्लम है. ये समझो तुम भी नहीं हो, शरीर नहीं है, संसार नहीं, कुछ नहीं, भगवान कोई भी कुछ नहीं, नथिंगनेस उनका लक्ष्य ये है. उन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज नथिंग, सब कुछ कुछ नहीं है. मध्वाचार्य ने बोला अगर सब कुछ कुछ नहीं है, जो तुम बोल रहे हो वो सब कुछ के अंदर आता है, इसलिए वो भी कुछ नहीं है. व्हाट यू आर स्पीकिंग इज ऑल्सो समथिंग. तो जैसे उन्होंने बात सुना, बोला कि अभी जो है अभी अशुभ समय है. अभी ये तर्क करने का समय नहीं, हम कल सुबह तर्क करेंगे. तो मध्वाचार्य ने बोला कि जो भी करना आज ही करो, आज ही फाइनल करना. बोला नहीं नहीं, हम तो कैसे भी करके उनको वापस चले गए, संध्या का समय होगा हमारा, ये हो गया करके बोले चले गए. अगला दिन वाद विवाद का समय आया, मध्वाचार्य आके बैठे तो आके देखे वो लोग आते ही नहीं है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे. तो जाके देखा जिन रूम में वो लोगों को निवास दिया था, उस जाके देखे उधर कुछ भी नहीं था, सब अपना सामान पैक करके निकल गए थे लोग. तो इस प्रकार दीज रॉन्ग फिलॉसफीज, हाउ वैष्णवास शुड सी दीज रॉन्ग फिलॉसफीज इन टू वेज, दो प्रकार देखना चाहिए. एक है किस प्रकार इस संसार को भ्रष्ट कर रहा है, इनको खंडन करना, ये पद भ्रष्ट कर रहा है. दूसरा है कि ये वैष्णव सिद्धांत का महिमा को प्रकाशित करता है. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, खास करके भक्तों को, लीडर्स को, कैसे भी करके समय निकाल के वी शुड नो हाउ व्हाट इज द रिलीजियस प्रिंसिपल. सद्धर्म पृच्छा, ये भक्ति रसामृत सिंधु का 64 भक्ति के अंगों में एक अंग है. सद्धर्म पृच्छा, बैठ के सद्धर्म क्या है वो जानना. ये कैसे जानेंगे, एक तो क्या है हमारा सिद्धांत जानना, दूसरा इन कंपैरिजन टू द रॉन्ग फिलॉसफीज व्हाट इज आवर पोजीशन, हाउ टू डिफीट द रॉन्ग फिलॉसफीज. तो आज का ये क्लास का सार यही है, भक्तों को स्वमत स्थापना, परमत खंडना, ये दोनों में निपुण होना चाहिए. दूसरी बात ये है कि ये गलत सिद्धांतों का खंडन करने के द्वारा वैष्णव आचार्यों का ख्याति, वैष्णव सिद्धांत का ख्याति वो प्रकाशित हो जाता है, यही है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कोई टीका टिप्पणी प्रश्न वगैरह तो भगवान की शक्ति के बिना ये फिलॉसफीज ऊपर नहीं आते. जैसे भगवान ने स्वयं बोला शिव जी को आप जाके मायावाद का रचना करो, इट इज ट्रू, क्योंकि ये एक भगवान का योजना है जिसके द्वारा वो सही जो धर्म है ये प्रकाश में आए. अगर व्यक्ति केवल क्या सही है वही जानता है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है. पूर्ण ज्ञान तभी है जब क्या सही है वो भी जानते हो और क्या गलत है वो भी जानते हो. अगर केवल यही बात जानते हो क्या सही है तो क्या होगा, गलत चीज जब सामने आता है तो भी सोचा कि ये भी सही हो सकता है, वो पदभ्रष्ट होगा. इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये दोनों बातों बताया जाता है. सो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग बोथ शुड बी नोन, दैट इज कॉल्ड नॉलेज. नॉलेज मीन्स नोइंग बोथ what is right and what is wrong and how it is right, how it other people are wrong. ये दोनों जाना. तंत्राश्रम भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय.